दानियल की पुस्तक संख्या 33। रविवार के कानून के फरमान पर अंकित परमेश्वर की मुहर। दानियल अध्याय 6 का भविष्यवाणी परक विश्लेषण।
ईश्वर की वो मुहर जो देखी जा सकती है, रविवार के कानून के अध्यादेश के समय लगाई जाती है।
हम में से कोई भी कभी परमेश्वर की मुहर प्राप्त नहीं करेगा जब तक हमारे चरित्रों पर एक भी दाग या कलंक बना रहेगा। ये हम पर छोड़ा गया है कि हम अपने चरित्रों की त्रुटियों को दूर करें, आत्मा के मंदिर को प्रत्येक अशुद्धता से शुद्ध करें। तब पिछली वर्षा हम पर वैसे ही गिरेगी जैसे प्रारंभिक वर्षा पिंतेकुस्ट के दिन चेलों पर गिरी थी।
तैयारी के महान कार्य में आप क्या कर रहे हैं भाइयों? जो संसार के साथ मिल रहे हैं वे सांसारिक ढांचा ग्रहण कर रहे हैं और पशु के चिन्ह के लिए तैयार हो रहे हैं। जो स्वयं पर अविश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के समक्ष स्वयं को दीन करते हैं और सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं, वे स्वर्गीय ढांचा ग्रहण कर रहे हैं और अपने माथों पर परमेश्वर की मुहर के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आदेश जारी होगा और मुहर लगा दी जाएगी, तब उनका चरित्र अनंत काल तक शुद्ध और निष्कलंक बना रहेगा। टेस्टिमोनीज खंड 5 200-270।
दानियल वह दिखाई देने वाली मुहर तब प्राप्त करता है जब उसे शेरों की मांद में डाला जाता है। इसलिए ये अध्याय रविवार के कानून के फरमान का प्रतिनिधित्व करता है।
तब वे पुरुष राजा के पास इकट्ठे हुए और राजा से कहने लगे, हे राजा, ये जान ले कि मादी और फारसियों का नियम ये है कि राजा के द्वारा स्थिर किया गया किसी विधान को बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और वे दानियल को लाए और उसे सिंहों की मांद में डाल दिया। तब राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है वही तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाया गया और मांद के मुहाने पर रख दिया गया और राजा ने उसे अपनी मुहर और अपने सरदारों की मुहरों से मुहर बंद कर दिया ताकि दानियल के विषय में निर्णय न बदला जाए। दानियल 6:15-17।
कहानी वहां समाप्त नहीं होती, पर जहां से शुरू होती है वहीं समाप्त होती है। दानियल के 6 अध्याय का वर्णन उस गठजोड़ को दर्शाता है जिसका नेतृत्व मुख्यतः 120 राजकुमारों और 2 कनिष्ठ अध्यक्षों ने किया था, पर उसमें सलाहकार, सेनापति और राज्यपाल भी शामिल थे। राजा को धोखा देकर दानियल को सताने के लिए एक पंचपक्षीय गठबंधन बनाया गया था। कहानी उनके न्याय पर आकर समाप्त होती है क्योंकि वे उस विशेष न्याय का चित्रण कर रहे हैं जो रविवार के कानून के समय होता है। ऐसा न्याय जो दानियल या राजा का प्रतिनिधित्व करने वालों पर नहीं बल्कि राजा को धोखा देने वालों पर लागू होता है।
और राजा ने आज्ञा दी और वे उन पुरुषों को ले आए जिन्होंने दानियल पर आरोप लगाया था और उन्होंने उन्हें, उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को सिंहों की मांद में डाल दिया और सिंह उन पर प्रबल हो गए और वे मांद के तले तक पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने उनकी सब हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी। दानियल 6:24।
भविष्यवाणी के परिदृश्य में सदा कलीसिया ही राज्य को छलती है और 6 अध्याय राजा के विरुद्ध किए गए उस छल की पहचान करता है। कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर की शक्ति के शक्तिशाली प्रगटीकरण को देखने के बाद एलिया उसे वर्षा के बीच से ले जाता हुआ वापस इजबेल के पास ले गया। अहाब के पास ये सोचने का कोई कारण नहीं था कि इजबेल परमेश्वर की शक्ति की प्रभावशाली गवाही से प्रभावित नहीं होगी, परंतु एलिया के प्रति इजबेल की गहरे बैठी घृणा के संबंध में वो धोखे में था। अहाब और इजबेल से टकराव में एलिया की कथा फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो एलिया था और हेरोद तथा हेरोद दिया की कथा में दोहराई जाती है। जब अपने जन्मदिन पर नशे में धुत हेरोद ने साल में हेरोदियास की बेटी को अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का वादा किया, तब उसे ये अपेक्षा नहीं थी कि हेरोदियास यूहन्ना का सिर मांगेगी। राजा, चाहे वो अहाब हो, हेरोद हो या दारियुस, अशुद्ध स्त्री द्वारा इजबेल के झूठे भविष्यद्वक्ताओं के नृत्य या हेरोदियास की बेटी के नृत्य या दानियल के वृत्तांत में वर्णित 5 गुना गठबंधन के माध्यम से धोखा खा जाते हैं। पिलातुस भी एक भ्रष्ट याजक वर्ग द्वारा धोखा दिया गया जो यहूदी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता था, और कलीसिया एक स्त्री का प्रतीक होती है।
धोखा भविष्यवाणी परिदृश्य की एक विशेषता है
और तीसरे विपत्ति का इस्लाम वो झूठ है जिसका उपयोग अंत दिनों में भय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को धोखा देने के लिए किया जाता है। धोखा और वो झूठ जो उस धोखे को उत्पन्न करता है, दोनों ही परमेश्वर के भविष्यद्वाणी वचन में पहचाने गए हैं। इस्लाम की भूमिका और पापसी का सात सिरों में से आठवां सिर बनना, ये दोनों ही उस संदेश का भाग होरी पहले से पहचाने जा चुके हैं जो अंत दिनों में मुहर खुलने पर प्रकट हुआ, अर्थात यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। इसलिए दानियेल अध्याय 6 में दारियस के धोखे का पर्दाफाश करना आधी रात की पुकार के संदेश का एक भाग है। यही धोखा वो तत्व है जो घातक घाव को पूरी तरह भर देता है और इस प्रकार पापसी को आठवें और अंतिम राज्य के रूप में पुनर्जीवित करता है। दारियस के धोखे में दो धर्म त्यागी प्रधान और 120 राजकुमार धोखे के गठबंधन के प्रतिनिधि हैं जिन्हें दानियेल के विपरीत रखा गया है। 120 पेंटेकोस्ट पर ईश्वर के शिष्यों का प्रतीक है।
और उन दिनों पतरस चेलों के बीच में उठकर खड़ा हुआ और कहा, कुल मिलाकर नामों की संख्या लगभग 120 थी। प्रेरितों के काम 1:15।
पेंटेकोस्ट उस रविवार के कानून का प्रतीक है जब मुहर अंकित की जाती है और दार्यावेश को छलने वाले 120 अधिपति रविवार के कानून के समय झूठी याजकता का प्रतीक है। राजा को छलने वालों की दो श्रेणियां दो धर्मत्यागी प्रधान अधिकारियों और 120 धर्मत्यागी अधिपतियों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उन दो प्रधान अधिकारियों को दानियेल जो नबी है के साथ उसी वर्ग में रखा गया है। दार्यावेश को छलने वाली ये दो श्रेणियां झूठे भविष्यद्वक्ताओं के एक समूह और भ्रष्ट याजकों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है।
हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चराई की भेड़ों को नाश करते और उन्हें तितर बितर करते हैं। ये प्रभु की वाणी है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर प्रभु उन चरवाहों के विषय में जो मेरी प्रजा की चरवाही करते हैं यूं कहता है, तुमने मेरे झुंड को तितर बितर किया, उन्हें भगा दिया और उनकी सुदी नहीं ली। देखो, मैं तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हें दंड दूंगा। ये प्रभु की वाणी है। और मैं अपने झुंड के बचे हुए लोगों को उन सब देशों से जहां मैंने उन्हें भगा दिया है इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनके बाड़ों में फिर ले आऊंगा और वे फलेंगे फूलेंगे और बढ़ेंगे। और मैं उन पर ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उनकी चरवाही करेंगे। तब वे न तो फिर डरेंगे न घबराएंगे और न उनमें से कोई खोएगा। ये प्रभु की वाणी है। देखो, वे दिन आने वाले हैं, ये प्रभु की वाणी है, जब मैं दाऊद के लिए एक धर्मी अंकुर उत्पन्न करूंगा और एक राजा राज्य करेगा और सफल होगा और पृथ्वी में न्याय और धर्म को कार्यान्वित करेगा। उसके दिनों में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल निडर होकर बसेगा और उसका नाम ये होगा जिससे वो कहलाएगा, प्रभु हमारी धार्मिकता। इसलिए देखो, वे दिन आने वाले हैं, ये प्रभु की वाणी है, कि वे अब ये ना कहेंगे, प्रभु जीवित है जिसने इज़राइल की संतानों को मिस्र देश से निकाला, परंतु प्रभु जीवित है जिसने इज़राइल के घराने की संतति को उत्तर देश से और उन सब देशों से जहां मैंने उन्हें भगा दिया था निकाल कर पहुंचाया, और वे अपनी ही भूमि में बसेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के कारण मेरा हृदय मेरे भीतर टूट गया है, मेरी सब हड्डियां कांपती हैं। मैं मध्य प्रांति के समान और उस मनुष्य के समान हूं जिसे दाख मधु ने अभिभूत कर लिया है प्रभु के कारण और उसकी पवित्रता के वचनों के कारण। क्योंकि देश व्यभिचारियों से भर गया है, शाप देने के कारण देश विलाप करता है, जंगल के रमणीय स्थान सूख गए हैं, उनका चलन बुरा है और उनकी शक्ति ठीक नहीं है। क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों ही अशुद्ध है, हाँ मेरे ही घर में मैंने उनकी दुष्टता पाई है, ये प्रभु की वाणी है। इस कारण उनका मार्ग उनके लिए अंधकार में फिसलन भरे रास्तों के समान होगा, वे धकेले जाएंगे और उनमें गिर पड़ेंगे। क्योंकि मैं उन पर विपत्ति ले आऊंगा, उनके दंड का वर्ष, ये प्रभु की वाणी है। यिर्मयाह 23:1-12।
यिर्मयाह का दंड का वर्ष उन षड्यंत्रकारियों का न्याय है जिन्होंने दार्यावेश को छल दिया। झूठे भविष्यद्वक्ताओं और याजकों का न्याय भविष्यवाणी के वचन का एक विषय है और जैसे भ्रष्ट याजकत्व ने मसीह के विरुद्ध रोमी अधिकारियों को उकसाया और धोखा दिया, वैसे ही दानियल के छठे अध्याय की साजिश उसी भविष्य सूचक सत्य को संबोधित करती है। दानियल के पांचवें अध्याय की भविष्य सूचक रेखाएं ये प्रतिपादन करती हैं कि रविवार के कानून के समय गणतांत्रिक सींग और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र पर न्याय का क्रियान्वयन किया जाएगा। वो न्याय तीसरे हाय के इस्लाम के द्वारा पूरा किया जाता है, जो बिना पहरे वाली दक्षिणी दीवार के रास्ते राज्य में चुपके से घुस आया है। दानियल के तीसरे अध्याय में रविवार के कानून की रेखा ये दर्शाती है कि ठीक उसी समय परमेश्वर के लोगों को समूचे संसार के सामने एक ध्वज के रूप में ऊंचा उठाया जाएगा। अध्याय 6 उसी इतिहास में झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर किए गए न्याय पर केंद्रित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सिंह दो वर्गों से मिलकर बना है, एक जो रविवार को उपासना का दिन मानता है और दूसरा जो केवल नाम के लिए सप्त को उपासना का दिन मानने का दावा करता है। इनके समकक्ष रिपब्लिकन सिंह के भीतर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियां हैं। मसीह के समय के सदूकी और फरीसी इन दो धर्मत्यागी सिंगों के प्रतिरूप थे। दारियस को धोखा देने की घटना में उल्लिखित दो धर्मत्यागी अध्यक्ष और 120 याजक भी प्रोटेस्टेंटवाद के धर्मत्यागी सिंह की इन दो श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि जिस समय ये कथा घटित हुई वे वास्तव में राजनीतिक हस्तियां थे, तथापि भविष्यवाणी का संदर्भ ये दिखाता है कि राज्य को धोखा देने वाली शक्ति धर्मत्यागी धार्मिक शक्ति है। ये कथा, जैसा कि कर्मेल पर्वत पर दर्शाई गई है, झूठे नबियों की दो श्रेणियों की पहचान करती है, बाल के नबी और उपवन अश्तारोत के नबी। वे मिलकर कलीसिया और राज के मेल का प्रतीक है, क्योंकि बाल एक पुरुष देवता है और अश्तारोत एक स्त्री देवी है। अंततः एलिया ने कर्मेल पर्वत के इन झूठे नबियों का वध कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे दानियल के छठे अध्याय के षड्यंत्रकारियों को सिंहों की मांद में डाल दिया गया था।
और एलिया ने उनसे कहा, बाल के भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ लो, उनमें से एक भी बचकर न जाने पाए। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एलिया उन्हें किशोन नाले तक ले गया और वहां उनका वध किया। 1 राजा 18:40।
उसी कार्मेल पर्वत की कथा में, जिसका प्रतिनिधित्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता है, धोखा देने वाली शक्ति बेटी है। दोनों कथाएं धोखेबाजों को नाचते हुए दिखाती हैं, चाहे कार्मेल पर्वत पर अपनी भेंट के चारों ओर या हेरोद की नशे में डूबी जन्मदिन की दावत में, जहां सालोमे ने अपना छलपूर्ण नृत्य किया। दोनों मिलकर उस कलीसिया और राज्य के गठजोड़ की पहचान कराती हैं जो रविवार के कानून पर पूरी तरह स्थापित हो जाता है, और ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मत्यागी कलीसियाएं हेरोदियास की बेटियां हैं, जो कि येजेबेल है, और दोनों कैथोलिक धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेरोद का जन्मदिन पृथ्वी के पशु के छठे राज्य के समापन का संकेत देता है, परंतु साथ ही बाइबल की भविष्यवाणी के सातवें राज्य संयुक्त राष्ट्र का जन्मदिन भी चिन्हित करता है। सालोमे से किए उसी वादे में हेरोद उसे अपने राज्य का आधा देने पर सहमत होता है, जो ये दर्शाता है कि सातवां राज्य आधा कलीसिया और आधा राज्य सत्ता का सम्मिश्रण है। यह राज्य तब आरंभ होता है जब यूहन्ना का सिर हेरोदियास को सौंपा जाता है। इसी कारण प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में सातवां राज्य थोड़े समय तक ही बना रहने वाला दिखाया गया है। रविवार के कानून के समय ही त्रिविध गठबंधन स्थापित किया जाता है, क्योंकि वहीं 10 राजा अपने अल्पकालिक राज्य को एक घड़ी के लिए पशु को देने पर सहमत होते हैं। वो एक घड़ी रविवार के कानून के संकट की घड़ी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ होती है और तब समाप्त होती है जब मिकाएल उठ खड़ा होता है।
और जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक कोई राज्य नहीं मिला, परंतु वे पशु के साथ एक घड़ी के लिए राजा के समान अधिकार पाएंगे। इनका मन एक होगा और वे अपना अधिकार और सामर्थ्य पशु को दे देंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो इसके साथ है वे बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य 70:12-14।
10 राजा जिनका प्रतिनिधित्व हेरोद करता है, सातवें राज्य के जन्मदिन पर इस बात पर सहमत होते हैं कि रविवार के कानून के संकट के दौरान, जिसे एक घड़ी के रूप में दर्शाया गया है, वे अपना आधा राज्य उस पशु को देंगे। उसी घड़ी में बेलशस्सर की दीवार पर हाथ का लेख लिखा जाता है। उसी घड़ी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डाल दिया जाता है और वे बादल में उठा लिए जाते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के दो गवाह भी उठा लिए जाते हैं। त्रिगुणा संघ को धरती के पशु द्वारा किए गए धोखे से साथ लाया जाता है, जो मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से आग उतार लाता है।
और मैंने पृथ्वी से निकलते हुए एक और पशु को देखा, और उसके दो सींग थे जो मेमने के समान थे, और वो अजगर के समान बोलता था। और वो पहले पशु के सामने उसके सब अधिकार का प्रयोग करता है, और पृथ्वी तथा उसमें रहने वालों को उस पहले पशु की उपासना करवाता है जिसका प्राण घातक घाव भर गया था। और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहाँ तक कि वो मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार देता है। और उन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें करने की उसे उस पशु के सामने शक्ति दी गई थी, वो पृथ्वी पर रहने वालों को भरमाता है और पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार का घाव लगा था, फिर भी वो जीवित रहा। प्रकाशित वाक्य 13:2।
दुनिया को धोखा चमत्कारों से उतना नहीं मिलता जितना उन चमत्कारों के साधनों से जिन्हें करने की उसे सामर्थ्य थी। उन चमत्कारों के साधनों, ये अभिव्यक्ति एक जोड़ा गया वाक्यांश है, पर ये चमत्कारों पर सही जोर रखती है। इस पर सावधानी से ध्यान देना चाहिए। झूठा संदेश, आकाश से आग, जिस ढंग से दुनिया को धोखा देता है, उसे पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी उसी इतिहास में हैं जिसमें पृथ्वी की जनसंख्या सूचना सुपर हाईवे के माध्यम से सम्मोहित की जा रही है, जो पृथ्वी के वैश्विकतावादी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित और हेरफेर किया जाता है। उस विषय को हम बाद के लेखों तक के लिए छोड़ेंगे, पर अभी हम केवल ये नोट कर रहे हैं कि अध्यक्षों और राजकुमारों का वो छल जो दारियस पर किया गया था, एक विशिष्ट भविष्ययुक्तिपरक विषय है जिसमें कई जुड़े हुए तत्व हैं जिन्हें पहचानना आवश्यक है। त्रिविध एकता हीरो के जन्मदिन की दावत में शासकों के सामने सलोमी के कामुक नृत्य से रचे गए छल द्वारा एकजुट की गई। पिलातस पर थोपा गया छल दोहरी प्रकृति का था। ये आरोप कि मसीह राज्य सत्ता के विरुद्ध राजद्रोह उकसा रहे थे और उसे बढ़ावा दे रहे थे, और ये भी कि वे धार्मिक सत्ता के विरुद्ध ईशनिंदा कर रहे थे। उस इतिहास में तीन विरोधी राज्य सत्ता दोहर सत्ता खड़ी थी, रोमी सत्ता दूत्रीता के शिमाने बर अब्बा एक झूठा मसीह झूठा नबी और धर्मत्यागी देरावायर यहूदी कलीसिया। पशु धर्मत्यागी कलीसिया ने राजद्रोह और ईशनिंदा के दोहरे झूठ से रोमी सत्ता दूत्रीता के धोखा दिया।
जब दारियुस को अंततः अपने छल करने वालों की मंशा का बोध होता है, तब उसे विवश होकर दानियल को सिंहों की माद में डालना पड़ता है। दानियल ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके राज्य के कानून का उल्लंघन किया। दारियुस के सामने प्रस्तुत किया गया झूठ उसके अभिमान को बढ़ावा देकर अंजाम दिया गया, और इस प्रकार वो अपने छल करने वालों की मंशा को पहचान नहीं सका। दानियल और सिंहों की मांद की कहानी में वो झूठ और छल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को ईशनिंदा और राजद्रोह ठहराता है। यही क्रूस का दोहरा छल था, और क्रूस का मार्ग छिन्ह रविवार के कानून के मार्ग छिन्ह के साथ मेल खाता है। धोखा देने वाली धार्मिक सत्ता को मिलने वाला दंड बाइबल की भविष्यवाणी का विषय है, जैसे कि ये तथ्य भी कि धार्मिक सत्ता राज्य सत्ता को धोखा देती है।
लोग देखते हैं कि उन्हें बहका दिया गया है, वे एक दूसरे पर उन्हें विनाश की ओर ले जाने का आरोप लगाते हैं, परंतु सब मिलकर अपनी सबसे कटु निंदा धर्मगुरुओं पर उंडेल देते हैं। अविश्वासी पादरियों ने मनभावनी बातों की भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपने श्रोताओं को परमेश्वर की व्यवस्था को निष्फल ठहराने और जो उसे पवित्र मानकर उसका पालन करते हैं उन्हें सताने के लिए प्रेरित किया है। अब अपनी निराशा में ये उपदेशक संसार के सामने अपने छल के कार्य को स्वीकार करते हैं। भीड़े क्रोध से भर उठती हैं। हम नाश हो गए, वे पुकारते हैं, और हमारे विनाश के कारण तुम हो, और वे झूठे चरवाहों पर टूट पड़ते हैं। जो लोग कभी उन्हें सबसे अधिक सराहते थे, वही अब उन पर सबसे भयावह श्राप देंगे। जिन हाथों ने कभी उनके सिर पर विजय मालाएं चढ़ाई थीं, वही हाथ अब उनके विनाश के लिए उठेंगे। वे तलवारें जो परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए थीं, अब उनके शत्रुओं का नाश करने में लगाई जा रही हैं। हर जगह कलह और रक्तपात है। महान संघर्ष 1656।
अनुग्रह का समय समाप्त होने के बाद लोग धर्मगुरुओं के विरुद्ध हो उठते हैं, क्योंकि उनकी मंडलियां पहचान लेती हैं कि धर्मगुरुओं द्वारा फैलाए गए झूठ से वे धोखा खा गए थे। राष्ट्रपति और राजकुमारों को अपने परिवारों सहित उस झूठ के लिए जिसे उन्होंने फैलाया था उसी प्रतिशोधात्मक न्याय को सहना पड़ा। जब एलिया ने कर्मेल पर्वत पर झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला, उसी प्रतिशोध का चित्रण प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महान भूकंप में किया गया है, जब 7,000 उलट दिए जाते हैं।
और उसी घड़ी वहां एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप में मनुष्यों में से 7,000 मारे गए, और जो बचे हुए थे वे भयभीत हो गए और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। प्रकाशित वाक्य 11:13।
फ्रांसीसी क्रांति के महान भूकंप की पूर्ति में मारे गए 7,000 लोग फ्रांस के राजघराने का प्रतिनिधित्व करते थे। महान भूकंप की घड़ी अर्थात रविवार के कानून के समय जो 7,000 मारे जाते हैं, वे उन सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रोम के आगे झुकते हैं, क्योंकि केवल वे ही जो सातवें दिन के सप्त की जवाबदेही को समझते हैं, रविवार का कानून लागू होने पर पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं।
सप्त में किया गया परिवर्तन रोमन कलीसिया के अधिकार का चिन्ह है या निशान है। जो लोग चौथी आज्ञा की मांगों को समझकर सच्चे के स्थान पर झूठे सप्त का पालन करना चुनते हैं, वे इस प्रकार इसी सत्ता को सम्मान अर्पित कर रहे हैं जिसके द्वारा ही ये आज्ञा दी गई है। पशु का चिन्ह पापाई सप्त है, जिसे परमेश्वर द्वारा नियुक्त दिन के स्थान पर संसार ने स्वीकार कर लिया है। परंतु भविष्यवाणी में निर्दिष्ट पशु का चिन्ह लेने का समय अभी नहीं आया है। परीक्षा का समय अभी नहीं आया है। हर कलीसिया में सच्चे मसीही हैं। रोमन कैथोलिक समुदाय भी इसका अपवाद नहीं है। जब तक लोगों को प्रकाश नहीं मिला और उन्होंने चौथी आज्ञा का दायित्व नहीं देखा, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। परंतु जब झूठे सप्त को लागू करने का फरमान जारी होगा और जब तीसरे स्वर्गदूत की जोरदार पुकार मनुष्यों को पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देगी, तब झूठ और सत्य के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से खिंच जाएगी। तब जो लोग अभी भी उल्लंघन करते रहेंगे, वे अपने माथे पर या अपने हाथ पर पशु का चिन्ह प्राप्त करेंगे।
तेजी से हम इस काल के निकट पहुंच रहे हैं जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं एक झूठे धर्म का समर्थन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सत्ता से मिल जाएंगी, जिसका विरोध करने के कारण उनके पूर्वजों ने सबसे भीषण उत्पीड़न सहा था। तब चर्च और राज्य के संयुक्त अधिकार से पोप का शब्द लागू कराया जाएगा। एक राष्ट्रीय धर्म त्याग होगा जिसका अंत केवल राष्ट्रीय विनाश में होगा। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 2 फरवरी 1813।
महान भूकंप की घड़ी अर्थात रविवार के कानून के समय जो 7,000 उलट दिए जाते हैं, उनका समानांतर एलिया के समय उन 7,000 से भी मिलता है जिन्होंने इजबेल के आगे झुकने से इनकार किया था।
तो भी मैंने इसराइल में अपने लिए 7,000 बचा रखे हैं, वे सब जिनके घुटने बाल के आगे नहीं झुके, और हर वो मुख जिसने उसे नहीं चूमा। 1 राजा 19:18।
7,000 का पहला उल्लेख उस विश्वास योग्य समूह की ओर संकेत करता है जिसने इजेबेल के आगे झुकने से इनकार किया, और अंतिम उल्लेख ऐसे अवशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो इजेबेल के आगे झुक जाता है। जब पापाई सत्ता महिमामय देश प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का पृथ्वी से उठने वाला पशु को रविवार के कानून के समय जीत लेती है, तो एक वर्ग उलट दिया जाता है और दूसरा वर्ग बाबेल के नियंत्रण से बच निकलता है, क्योंकि तब बाबेल से बाहर निकलने का संदेश आरंभ होता है।
वो उस महिमामय देश में भी प्रवेश करेगा और बहुत से देश पराजित कर दिए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदोम, मोआब और अम्मोनियों में से प्रधान लोग। दानियल 1:10-11।
कंट्रीज शब्द एक अतिरिक्त शब्द है, क्योंकि बहुत से देश रविवार के कानून के समय ओवरथ्रोन नहीं होते, पर बहुत से व्यक्तिगत सातवें दिन के एडवेंटिस्ट ओवरथ्रोन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तीसरे स्वर्गदूत के प्रकाश के प्रति जवाबदेह ठहराए जाने वाले केवल वही होते हैं। वे बहुत से हैं क्योंकि वे ही थे जिन्हें परमेश्वर की मुहर पाने वालों में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था, पर उन्होंने उस बुलाहट को अस्वीकार कर दिया।
और उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र न पहने यहां कैसे आ गया? और वो निरुत्तर रह गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22:12-14।
दानियल के 6 अध्याय में राजकुमारों और प्रधानों का कपट उस धार्मिक सत्ता को मिलने वाली सजा की पहचान करता है जो राज्य सत्ता को धोखा देती है।
और राजा ने आज्ञा दी और वे उन पुरुषों को ले आए जिन्होंने दानियल पर आरोप लगाया था, और उन्होंने उन्हें, उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को सिंहों की मांद में डाल दिया, और सिंह उन पर प्रबल हो गए और वे मांद के तले तक पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने उनकी सब हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी। दानियल 6:24।
हम अगले लेख में दानियल की पुस्तक को आगे बढ़ाएंगे।
और मैं और क्या कहूं, क्योंकि यदि मैं गिदोन, बराक, शिमशोन और यिफ्ता, दाऊद, शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा, जिन्होंने विश्वास के द्वारा राज्यों को वश में किया, धर्म का कार्य किया, प्रतिज्ञाएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। इब्रानियों 11:32-33।